एक और उनकी कोशिश और आज भी वही है, और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे कि तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद यहां कुछ ज्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे। हाईलाइट कर लें, खुशखबरी है इसमें आपके लिए, आप अपने कुरान पे फर्म रहें। जो लोग आज आपके पाँव खेड़ना चाहते हैं ना, अल्लाह कहते हैं वो खुद भी यहाँ नहीं रहेंगे, अल्लाह ने उनके लिए भी कुछ सोचा हुआ है। ये हमारा मुस्तकिल तरीकेकार है जो इन सब रसूलों के मामले में हमने बरता, जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे तरीकेकार में कोई तब्दीली तुम ना पाओगे। करो क्या उम्मत मुस्लिमा जवाल को बदलना चाहते अरूज में, तो अकीम सलात अली दलू की शमसीला गसकिल्लैली व कुरआन अल-फज्र, नमाज कायम करो जवाले आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक, और फजर के कुरान का भी इख्तमाम करो, क्योंकि फजर का कुरान पेश किया जाता है। क्या पता चला, फजर के साथ अपने दिन का आगाज करो, फजर कजा की तो फिर सोचो अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करेगा। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, थोड़ा सा अभी करती हूँ, अभी ये करती हूँ, और फजर का कुरान नमाज में पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नमाज के बाद तो सीधा बिस्तर में घुसना है आपने। नहीं, अल्लाह कहते उठो, थोड़ा अच्छा मैं कुरान छू लूँ, अच्छा मैं पकड़ तो लूँ, चलो एक आयत पढ़ लूँ, फिर एक पढ़ेंगे, अगले दिन दो पढ़ेंगे, चार, एक वक्त आएगा आपको अच्छा लगेगा, फिर दुआएं मांगे कि अल्लाह फजर का कुरान मेरे लिए आसान कर दे। फिर अगर इससे भी ज्यादा तौफीक मिल गई तो रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज कर दे। फिर तहज्जुद पढ़े, आजकल देखिए फजर से पहले उठते हैं ना, तो क्या रमजान के बाद फजर पे भी नहीं उठ सकते? एक महीना ट्रेनिंग दी जाए एक उम्मत को और उसका हाल क्या? और यहां से पता चलता है कि तहज्जुद पढ़ने वाले नबी को अगर मुकाम महमूद का वादा है, तो आज उम्मत मुस्लिमा अगर तहज्जुद पढ़ेगी तो दुनिया में उसकी तारीफें होंगी महमूद का मुकामों का। और सहाबा के वाकयात आप कुछ सुन भी चुके हैं कि किस तरह से मैदान जंगों में जाते और रातों को खड़े होकर कुरान पढ़ते। आज ये मिक्सचर पैदा कीजिए, फिर देखिए कैसे होगा, और फिर वो हिजरत की राहें अब हमवार हैं। दुआएं नबी की जुबान पे है, वको रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन वाखरिजनी मुखरज सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा। हाईलाइट करें, मैं वेस्ट में जाऊं, ईस्ट में जाऊं, साउथ में जाऊं, नॉर्थ में जाऊं, तू मुझे सच्चाई के साथ और सच्चाई के इस्लाम और अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए और अल्लाह का बंदा बन के रहते हुए, मैं वेस्ट में आऊं तो मेरी जिंदगी में झूठ ना आ जाए, और मैं जरा चार जमातें पढ़ लूं किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ आ जाऊं तो मेरा सारा इस्लामी धुलधला ना जाए, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल। किसी मजबूरी में अपने मुल्क को छोड़ा, कोई बड़ी बात नहीं, मक्का से वापस आना पड़ा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सच्चाई मेरे साथ जाए, मैं दुनिया में जहां भी जाऊं इसी किताब के साथ जाऊं, और मुझे सबसे बड़ी बात वजल्ली मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा, और अपनी तरफ से एक इक्तदार को मेरा मददगार बना, मुझे एक ऐसी टीम दे दे कि जो मेरे साथ इस मकसद के लिए लड़ने वाली हो, रोने वाली हो, तड़पने वाली हो, रातों को जागने वाली हो। याद रखिए ये वो आयत है जो हिजरत से पहले की तैयारियां थी। मक्का का दौर कौन सा था? तबलीग का दौर था। लिख लीजिए, बीच शुरू में बात की थी, शायद आपको भूल गई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं, शुरू में ऐसे ही होता है, लेकिन तबलीग और निफाज इस्लाम, ये दो चीजें लाजिम होती हैं। हजरत मूसा और ईसा ने तबलीग तो की लेकिन इस्लाम नाफिज नहीं कर सके, क्योंकि साथ ही अच्छे नहीं मिले। अल्लाह के नबी के जरिए अल्लाह ने ये दोनों काम लिए। मक्का के 13 सालों में तबलीग पूरी हो गई, जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम थे, और कब्र के 3 सवाल है, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन रसूलू का, वो पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला ने नबी के जरिए इस्लाम नाफिज करना था, तो अल्लाह के नबी को दुआएं सिखाई गई कि इक्तदार चाहिए या सुल्तान, बड़ी बात है। देखिए गलबे के लिए क्या चाहिए, ये आज मेरे आपके इस थीम से ये बात चलती है। हम चाहते हैं कि दुनिया में इस्लाम को गलबा मिले, चाहते हैं कि नहीं? तो सवाल पैदा होता है कैसे? ये जो अल्लाह के नबी को कहा गया मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा, तो ये सुल्तान क्या है? कोई कहेगा मीडिया, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा हथियार, सबको बड़ा सा क्रॉस लगा दें। सुल्तान का आगाज क्या है? गलबे के लिए लाजमी चीज गैर मशरूत इतात करने वाले लोग, जमी हुई ठुकी हुई टीम, रातों को जागने वाले, दिनों को जागने वाले। वो ये नहीं कहते कि बस और कितनी देर है, टाइम बताएं, कब बुलाया, दैट्स इट, वक्त पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए आप टाइमली आवरली काम नहीं कर सकते, फिर चले जाए आप, फिर आपसे गलबा नहीं होगा। जो घड़ी देकर आए और घड़ी देकर चला जाए और कहे कि बस टाइम खत्म, सॉरी, पीछे पड़ चुके हैं। मूसा को 30 रातों के लिए बुलाया, 30 को 40 में बदल दिया, मूसा बदगुमान तो नहीं हुए? कौम पीछे बदगुमान होगी। सिर्फ 10 दिन के फर्क का छोड़ो, हमने इनसे बात करते क्या, हाँ कुछ था कर कुछ दिया, जो वक्त दिया था उसको इधर ले गए उधर ले गए। अल्लाह को वो ग्रोह चाहिए कि जो इस तरह से अपनी ताकत पेश कर दें अल्लाह के लिए, वक्त लगाएं, मेहनत करें, जज्बे लगाएं, माल चाहिए तो माल दें, वक्त चाहिए तो माल दें, कमिटमेंट करने वाले जाने नहीं देते। अंडर कमिट ओवर डिलीवर, लिख लीजिए। सुल्तान नसीरा कौन सा गिरोह होता है जो कमिट थोड़ी चीजें करते हैं लेकिन कर ज्यादा लेते हैं, और अगर इससे ऑपोजिट हो जाए ना कि ओवर कमिट और अंडर डिलीवर, तो वो तबाहो बर्बादी की तरफ इशारे हो जाते हैं। और ये कौन सा गिरोह है जो आगे का सोचते हैं, जिनके दिलों में इरादे आते हैं, प्लान आते हैं, वो आइडियाज ला के शेयर करते हैं, बस अप्रूवल दे दें बाकी काम हम खुद कर लेंगे। ये था वो गिरोह जो ख्वाब देखने वाले थे। याद रखिए, इस्लाम तब गालिब होगा जब लोग ऐसे ख्वाब देखने वाले होंगे। ये नहीं कि बारिश हो गई तो फिर छप्पर डालें, और जो लोग छोटी छोटी बातों पे घर बैठने की धमकियां दे, आज नहीं आ सकते बारिश होगी, मेहमान आ गए नहीं आएंगे, आज बच्चा रोपड़ा नहीं आएंगे, आज प्लम्बर आगे नहीं आएंगे, तो जो ये एटीट्यूड लेकर आता है वो कभी नहीं टिकेगा। अल्लाह कहते हैं जाओ, तुम्हें अपने आप को देखना है। टैलेंट चाहते हो ना, होता है, बहुत सारों में होता है, यूज नहीं हो पाता। जान बचाने वाले कभी काम नहीं करेंगे, कमिटेड लोग, नमक से बने हुए लोग हैं जो बारिश के आने पे घर बैठ जाएं, लोग तो नहीं बैठते। याद रखिए, 800 साल इस्लाम चलता रहा सुल्तान नसीरा की वजह से। ठुके हुए लोग थे, इस्लाम की बुनियादों में वो कील बन के चले थे। और जब हम सब जागेंगे, जब हमारे अंदर ये कमिटमेंट अल्लाह के दीन के लिए आ जाएगी, तो क्या होगा, वो कुल जाल हक वजहकल बातिल इन्नल बातिल का नज़ुक खा के। जब लोग ऐसे जागते हैं, जब मुसलमानों में ये कमिटमेंट आती है, तो उसका नतीजा क्या, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला है। मैं और आप सब चाहते हैं कि बातिल मिटे, लेकिन इसके रास्ते की कुर्बानियां कोशिशें ये हमें आगे नहीं जाने देती। वो कहते हैं ना कि दिल तो बहुत चाहता है शहीद होने को, पर सुना है कि जालिम जान से मार देते हैं। जालिम है, जान से मरना चाहते हैं, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी। ये पत्थरों का रास्ता, ये फूलों का रास्ता नहीं, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं, ये फूलों का नहीं, कांटों का। हाँ ये लग पाता है कि अल्लाह के रास्ते में कांटों पर नींद आती है, अभी अगली सूरत में पढ़ने वाले हैं, फिर देखिएगा कि अल्लाह के रास्ते में अब करें कैसे, कैसे हक आए। नंबर एक कोशिश, और कोशिश का आगाज इल्म हासिल करने से होता है, फिर इरादे बनते हैं, फिर मजीद नेकियों के प्लान बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बंदों को चुन लेता है। एक की सोच नहीं होती, सैकड़ों लोगों की सोच है। मैं आपको पूरे यकीन से कहूंगी, जो अभी आप तो यहां अभी नया नया सफर है ना हमारा, ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग जानते हैं, बीसियों प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, बीसियों अल्लाह के हुक्म से, जिसमें कहीं इल्म के, कहीं तालीम के, कहीं मशवरों के, कहीं इस्लाहों के, ये सब साथियों की कोशिश है। मेरा तो दिमाग सबसे थोड़ा लगता है, ये इनके इरादे ख्वाहिशात होती हैं, थोड़े से मशवरे देते लेते हैं एक दूसरे को और ये काम कर देते हैं। और फंड्स के साथ इस तरह से काम लगते हैं कि एक चीज आती है तो पहले से प्लान तैयार होता है। अभी हमारी एक मीटिंग थी तो उसमें ये बात हो रही थी कि इस साल का प्रोजेक्ट क्या है, जो अल्लाह ने लेना होगा ले लेगा। जब लोग कहते हैं ना कि पैसे दें, डोनेशन दें, ज़कात दें, सदका दें, लोग क्या सोचते हैं, शायद ये मांगने वाले लोग हैं, और आप ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहें तो कर लीजिए, तो वो प्रोजेक्ट होता है। वो आपके ऊपर एहसान है दीन वालों का कि उन्होंने आपको नेकी का मौका दिया ताकि आपका माल अच्छी जगह लग जाए। फेंकना तो माल होता है, लोग ज़कात का माल कहाँ फेंक के जाते हैं, जहां से फिर दोबारा लोग खाने खा खा के आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखिए कि हमेशा याद रखिए, दिमाग से सोचने लग गिरोह जब दीन की तरफ आता है, अल्लाह ताला उनको लेकर आता है। तकलीफें आती हैं, शुरू में आएंगी, शुक्र कीजिए दीन के रास्ते में आए, सबको आती हैं। फिल्में बनाने वालों का पांव फिसलता है, वो पहाड़ी से गिर के फ्रैक्चर हो जाता है, फिर भी तकलीफ आई। कोई मुश्किल, एक स्लॉट के लिए वो कई दफा अपनी जान नोक जोखों में डाल देते हैं, मर जाते हैं कई दफा ऐसे ऐसे काम करते, जंगलों में जाते, जानवरों के साथ रहते, पहाड़ों की चोटियों पर रहते। तो क्या मैं और आप दीन के लिए अगर कोई मुश्किल लाते हैं तो क्या होगा? वो कहते हैं ना ना ना, घर टूटेगा, तलाक होगी। याद रखिए, अगर दीन पर काम करने से तलाक होती तो एलिजाबेथ टेलर को तलाक ना होती। वो जो लेडी डायना दुनिया से चली गई, उसके कभी प्रिंस चार्ल्स से ताल्लुकात ना बिगड़ते। ये सिर्फ शैतान का धोखा है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, दीन से रोकने के लिए लोगों के साथ क्या करता है। हम इस कुरान के सिलसिले तंजील में वो कुछ नासिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज में इजाफा नहीं करता। इंसान का हाल यह है कि जब हम इसको नेमत अता करते हैं तो वो नखरे करता है, यानी ईंटता है और पीठ मोड़ लेता है, और जब जरा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। ऐ नबी इन लोगों से कह दो, हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। हर एक एक शाकिला होती है। अबू बकर की शाकिला में हिल्म था, नरमी थी। उमर की शाकिला में जोश था, लीडरशिप क्वालिटीज थी। उस्मान में हया थी, अली में ब्रेवरी थी। मैं और आप अपनी शाकिला को पहचाने, अल्लाह ने मुझे किस शक्ल पे पैदा किया, मेरा टैलेंट क्या। शाकिला को टैलेंट लिख लीजिए, इंग्लिश में बात समझ आ जाएगी। हर बंदा अल्लाह को जवाब दे है हर उस नेमत के लिए जो अल्लाह ने उसको दी, और वो सिर्फ दुनिया कमाने और दुनिया बनाने के लिए उसको खपा रहा है और अल्लाह ताला के रास्ते में उसको नहीं खपा रहा। एक सवाल था कि रूह क्या होती है, उसके बारे में जवाब है। ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही फायदा पाया। देखिए, रूह का लफ्ज़ तीन चीज़ों के लिए कुरान में आता है। एक तो जिस्म की रूह जो अंदर आती है, जिब्राइल अमीन को भी रूह कहते हैं, वही लेकर आते थे, और इसी तरह से वही इलाही, तीनों एक ही चीज़ें हैं, तीनों में जिब्राइल कॉमन है। जिस्म में रूह पड़ती है तो जिंदगी होती है, इसी तरह रूह पड़ती है दिल में कुरान की वही की तो इंसान जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इसके बारे में बहुत नहीं जानते। हकीकत यह है कि हम असल स्पिरिट्स जिसको कहते हैं उसके बारे में तो ज्यादा नहीं जानते, तो कम अज कम हम इस वही की रूह यानी कुरान के बारे में जानकर अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। और ए नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें। अल्लाह अकबर, हाईलाइट करें, दिल बैठ गया पढ़ते ही। कह नबी, ये सारा इल्म, सारी बातें, बोलती हुई जुबान, सोचता हुआ दिमाग, देखती हुई आंखें, सब हम पलट लें, वापस ले लें। क्यों? सुनिएगा, ए नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन ले जो हमने वही के जरिए से तुमको अता किया, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती ना पाओगे जिसे वापस दिला सके। ये जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है, हकीकत ये कि इसका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो ना ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। क्या पता चला कि इंसान को जो कुछ मिला छीन सकता है। 3 सेकंड तक इस पूरी पे गौर कीजिए। नबी को मुतालबे करते थे आके कि हमें मुतालबे दे, अल्लाह के नबी ने कहा कैसे दोगे, तुम तो अपनी इस हाफजे और अपनी नजरों पर भी कादिर नहीं हो। तो क्या पता चला जो नेमत मिली है उसको अल्लाह के रास्ते में लगाए, वरना अल्लाह की धमकी मैं किसी वक्त छीन लूंगा। आपने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों के नाम सुने होंगे, मुफक्कर मुसर, फिर दिमाग खराब हो गया, पागलों के दुनिया से गए, हैंडीकैप हुए। जितने साइंटिस्ट और मशहूर लोग आपको इधर दिखेंगे, आप देखें उनमें से बहुत ही कम लोग सही सलामत हालत में गए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सारी सलाहतें अपने इस किताब और अपने इस दीन के लिए लगा दे, और अल्लाह के बंदों की खैर के लिए लगा दे।